गए थे 23 मई 1967 का रात क्लास पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। इस समय 500 करोड़ मनुष्य हैं और सतयुग में 9 लाख भी पूरे नहीं होंगे तो फिर बाकी इतने कहाँ जावेंगे। अगर लाखों वर्ष की सृष्टि हो तो ये समझने की थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थी हो संगम युग पर और मनुष्य ही पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर और बाकी सुनिए सारी दुनिया कलयुग में है। अभी बाप आए हैं संगम युग पर है सतयुग की स्थापना करने के लिए। पहले स्वर्ग जरूर था और बाप ने ही स्थापन किया होगा। तुम यहाँ आते हो बेहद के बाप के पास और वो बेहद का बाप भी तुम आत्माओं से बात करते हैं। उनसे बात करते हैं 500 करोड़ से बात नहीं करते हैं। 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य हैं वो आत्माएं नहीं है। आत्मा फिर उनसे बात नहीं करते। आत्माएं तो हैं, परंतु वो पूरी आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ नहीं करती। परिपक्व आत्मा अगर बन जावे तो पूरे 84 जन्म लेवे। पक्की पक्की आत्मा बनने का पुरुषार्थ न करने के कारण कम जन्म होते हैं। और तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो वो पूरा पूरा आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हो तो पूरे 84 जन्म लेते हो। पूरे 84 के चक्र में आते हो, तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। तो तुम हो बेहद के बाप के डायरेक्ट बच्चे। बेहद का बाप भी आत्माओं से बात करते हैं शरीर द्वारा। आत्मा ही बोलती और सुनती है। करतूतें अच्छी व बुरी जो भी करते हैं उनका सारा हिसाब किताब अंतिम जन्म में आके पूरा हो जाता है। फिर सत्य को में विकार का नाम नहीं रहता है। अभी तुम संपूर्ण विकारी बन गए। संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कैसे बनेंगे? संपूर्ण विकारी कैसे बन गए? देह अभिमान में आने से संपूर्ण विकारी बन गए। और संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे? आत्माभिमान में रहने से संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो अपन को आत्मा समझते रहो, बाप को याद करते रहो। जितना जास्ती बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। मनुष्य से देवता संगम पर बनते हो। और कोई युग नहीं है जिसमें मनुष्य से देवता बनने की मशीनरी चलती हो। ये संगम युग अति कल्याणकारी युग है। तो इसी समय पवित्र बनना है। और बाप को याद कर ले। उठते बैठते चलते शिव बाबा को याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप दादा के बच्चे हैं, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा द्वारा वर्षा कैसे लेते हैं? इसलिए मुरली में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? तो सरस्वती निमित्त बनाई दिए। वास्तव में सहन शक्ति का माता का बड़ा का बड़ा पार्ट इस ब्रह्मा ने बजाया है। तो दुनिया में जो भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे बड़ी ती बड़ी माता ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, ब्रह्मा तन पुरुष का है, इसलिए पूजा नहीं जाता। वही पुरुष तन छोड़ करके जब कोई स्त्री चोने में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते हैं। बल शरीर छूट गया तो भी ब्रह्मा की आत्मा ही निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने की। किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। ब्रह्मा की आत्मा को भी वर्षा मिलना है, अभी मिला नहीं है क्या? अभी भी ब्रह्मा की आत्मा भटक रही है, कभी गुलजार दादी में प्रवेश करती है, कभी बच्चों में प्रवेश करती है, कभी बाबा के पास पढ़ने पहुंच जाती है। अभी भी पढ़ाई चालू है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो उनकी आत्मा को भी वर्षा मिलता है। किससे मिलता है? उनसे वर्षा मिलता है जो सबका बाप है। अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनने की पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? ये ब्रह्मा हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता क्या? कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, कैसा पुरुषार्थ करता है? सत्युग में जन्म लेगा ना, तो सत्युग में जन्म कैसा होगा? सोने जैसा जन्म होगा। और तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो क्योंकि तुम हीरो पाठधारी से सन्मुख सुनते हो अपने शरीर के द्वारा। ब्रह्मा का तो अपना शरीर छूट गया, वो तो दूसरी माता के तन में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ता है, उसका अपना तन नहीं है। इसलिए तुम बच्चे इस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। तुम्हारी याद ब्रह्मा की याद से भी जास्ती तीखी है, इसलिए तुम ऊंच पद पाते हो। है तो पुरुषार्थ सबके लिए सहज, पुरुषार्थ न किया तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम हो गॉडफादरली स्टूडेंट, स्टूडेंट हो और ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, फिर ये ब्रह्मा गुरु भी है, क्या भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु है लेकिन सदगुरु नहीं है, कौन? ब्रह्मा भी गुरु है। गुरुओं की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, गुरु तो दुनिया में बहुत हुए, उनमें ब्रह्मा भी एक गुरु है लेकिन मनुष्य गुरु है। सदगुरु निराकार अकाल मूर्त नहीं है। कैसा गुरु नहीं है? अकाल, जिसको कोई काल खा न सके। सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु, एक है सतगुरु अकाल मूर्त। इसलिए सिख लोग गाते हैं सत श्री अकाल, एक सतगुरु अकाल मूर्त। एक सतगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे हो जाते, क्योंकि सत्ययुग की तो स्थापना कोई नहीं करते। एक सतगुरु आकर के सत्य खंड स्थापन करके जाते। तो ये ब्रह्मा भी गुरु है, कोई भी गुरु किसी को वापस नहीं ले जा सकता, क्या? ये ब्रह्मा भी वापस नहीं ले जा सकता। दुनिया का इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी गुरु किसी को वापस नहीं ले जा सकता। फिर कौन ले जाता है? सदगुरु आकार मूर्त कहते हैं तो उसकी मूर्ति है या नहीं है? सदगुरु की मूर्ति है या नहीं है?
अरे
अकाल माने जिसको कोई काल नहीं खाता, काल आत्मा को खाता है या मूर्ति को खाता है? शरीर को खाता है, मूर्तिमान को खाता है या अमूर्त को खाता है? मूर्ति को खाता है काल। ये जो सतगुरु है, जो सतयुग में ले जाता है, इसको काल नहीं खाता है। तो जिसको काल नहीं खाता, उसका कोई रूप दिया हुआ है? ये चार चित्र साक्षात्कारों से तैयार किए गए हैं, उनमें कोई रूप दिया गया है? झाड़ के चित्र में कोई रूप है? जो कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। नहीं याद आया? काल प्रवक्ते के ऊपर शंकर का चित्र रखा हुआ है, सब आत्माएं बिंदु बिंदु वापस जा रही है। इस दुनिया में शरीर छोड़ करके सबको वापस जाना है। उसकी मूर्ति रखी हुई है, उसकी मूर्ति को काल खाते हुए कोई आत्मा नहीं देख पाती। तो तुम ऐसे सदगुरु अकाल मूर्त के स्टूडेंट हो, गॉड फादरली स्टूडेंट हो। और वो कोई गुरु पवित्र नहीं बना सकते। ये सदगुरु तो तुमको पवित्र बना करके तब ले, वो ढेर के ढेर भक्ति मार्ग के गुरु है। और ये ज्ञान मार्ग का एक ही गुरु है। 24/5 का रात की क्लास है, छोटा सा। बाप ने जो स्कूल खोला है, इस स्कूल में कोई बूढ़े हो, बहरे हो, लूले लंगड़े हो, सब पढ़ाई पढ़ सकते हैं। उन स्कूलों में सबको नहीं भर्ती करेंगे, बूढ़ों को भर्ती नहीं करेंगे, यहां तो सबको भर्ती किया जाता है, यहां देह को देखते ही नहीं। क्या देखते हैं? यहां तो आत्मा को देखते हैं, आत्मा को पढ़ना है। अभी परमात्मा सब आत्माओं को नहीं पढ़ावेंगे तो किसको पढ़ावेंगे? आत्माओं को ही पढ़ावेंगे। जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली नहीं है, वो तो जैसे जानवर बुद्धि है। कोई कोई तो ऐसी है जो कीड़े मकोड़े में से सिर्फ एक ही जन्म लेती है। कलयुग के अंत में आवेंगे, एक जन्म में आधा सुख आधा दुख भोगेंगे और वापस चले जाएंगे। तो उनको नहीं कहेंगे कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, ऐसे हैं जैसे जानवर मिसल मरने वाले। इसलिए तुमको समझाना पड़ता है। क्या वो जानवर जैसा पार्ट बजाने वालों को नहीं समझाते हैं? तुम रूहानी स्टेज धारण करने वालों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं कि तुम सत्वप्रधान विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर ये बातें तुमको याद दिलाते हैं। यहां आते ही हो बाप के पास, यहां सन्मुख आकर के बाप से सुनेंगे, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। सिर्फ सुनाते नहीं है, सुनाने के साथ साथ एक एक बात की गहराई को समझाते भी हैं। कोई कोई नए नए आ जाते हैं और आग्रह करते हैं कि हम बाबा को देखें। बाहर दरवाजे में बैठे होंगे, अंदर भी कोई आए होंगे, आग्रह करते हैं, हठ करते हैं, आग्रह माना हट करते हैं कि हम बाबा को देखेंगे। अरे बाबा तो निराकार है, इन आंखों से देखेंगे क्या? अपनी आत्मा को इन आंखों से देखते हैं क्या? अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई पड़ती तो आत्माओं का बाप परमात्मा कैसे दिखाई पड़ेगा? बिंदु बिंदु आत्माएं, बिंदी टीका लगाते हैं मस्तक में, आत्मा की यादगार है ना? इन बिंदु आत्माओं का बाप कौन है? वो भी निराकार शिव है। तो ना आत्मा को कोई देख सकता और ना कोई इन आंखों से परमात्मा को देख सकता। कैसे देख सकता है? देखने का तरीका क्या है? त्रिनेत्री बाप आते हैं तो तीसरा नेत्र ज्ञान का खोलते हैं। तीसरा नेत्र जब तक न खुले तब तक कोई बाप को पहचान नहीं सकता। सुने सुनाए आ जाते हैं कि भगवान आया हुआ है, आज सुनेंगे कि भगवान आया हुआ है, तन सुनेंगे, अरे भगवान नहीं था, हम तो भूल गए, ये तो शैतान था। तो अनिश्चय बुद्धि हो पड़ेगी। इसलिए बाप कहते हैं पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझो। परमात्मा बाप इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। बाबा बाहर वालों को आने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। क्या कहा? अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर वाले वो जो घर के अंदर रहते हैं। बूढ़ा आदमी शरीर छोड़ता है, आत्मा जाकर के दूसरे घर में जन्म लेती है, तो जहां जन्म लेती है वहां बाप मिला ना, वहां जाकर के दूसरे बाप का बच्चा बना ना, वहां घर में जाके पैदा होना पड़े। तो यहां भी बाप कहते हैं। जैसे वहां बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने गर्भ में रहता है, यहां बेहद की बात है। यहां फिर 7 दिन की भट्टी है, 1 दिन आना 1 दिन जाना। 9 दिन की भट्टी में पकने के बाद फिर निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये हमारा बाप है। बाप के घर में पहुंचना पड़े तब कहेंगे बाप का बच्चा बना। कोई आत्मा बाप के घर में जाके जन्म न ले और कहे मैं इस बाप का बच्चा हूं तो कोई मानेगा क्या? जन्म लेना पड़े। यहां स्थूल जन्म की बात नहीं है। बाप भी कोई स्थूल जन्म नहीं लेते हैं, बाप भी बेहद का जन्म लेते हैं और हम आत्मा रूपी बच्चों को भी बेहद का जन्म देते हैं। तो जो बाहर के बच्चे हैं उनको आने की इजाजत बाबा नहीं देते हैं। बाकी ज्ञान में चलने वालों के कोई अजीज मित्र संबंधी है क्या? वो ज्ञान में चलता है उसके घर में बहुत होंगे जो ज्ञान में नहीं चलते होंगे। माँ ज्ञान में नहीं चलती हो, बाप ज्ञान में नहीं चलता हो, छोटा बड़ा भाई ज्ञान में नहीं चलता हो, तो ऐसे कोई संबंधी हैं तो कहां नाराज ना हो जावे इसलिए उनको इजाजत दे देते। क्या कहा? जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनके घर परिवार के अगर कोई है और अजीज कोई मित्र संबंधी है तो उनको आने की इजाजत दे देते। इसलिए बोला कि जो भी इस एडवांस ज्ञान में आते हैं उनको वरदान मिल जाता है कि उनका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। अकेले नहीं रहेंगे, पूरे परिवार के साथ अंत में चलेंगे। बट्टी भी करेंगे, बच्चा तो बनना पड़े। बल कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी, समझी? ज्ञान में चलता है, उसके घर परिवार के लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन वो रोज मुरली सुनता है, टेप रिकॉर्डर चलाता है, VCD चलाता है, तो घर के लोग भी सुनते तो है ना। तो वो सुनने वाले भल कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी, हमने बाबा की मुरली समझी। शिव बाबा ने यही बातें समझाई। जो भी बाबा ने सुनाया वो हमने समझा सुना। ऐसे ऐसे कहते हैं तो हम क्यों ना बाबा के पास चले जावे। तुम कहेंगे तुमने कुछ भी नहीं समझा है अभी, रिपीट करना तो बड़ा सहज होता है कि बाबा ने ऐसे बोला ऐसे बोला, ये समझा वो समझा समझाया, रिपीट करना और बात होती है और बात की गहराई को समझना अलग बात होती है। ऐसे जो कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी है समझी है, परंतु अंदर के बच्चे नहीं बने फैमिली के, वो कोई याद थोड़े ही करते हैं। याद कब करेंगे? जैसे कि कुछ भी समझते नहीं है। 24 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज, तकदीर में ही नहीं बैठना है तो मुश्किल पड़ जाती है। तो ये ज्ञान बहुत सहज, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। जब नहीं समझते हैं तो कभी समझेंगे नहीं। वास्तव में यह जैसे कि ईश्वरीय दरबार है और ये ईश्वर की दरबार देवताओं की दरबार से भी बहुत ऊंचे है। गुरु नानक की दरबार कहते हैं ना, फिर भी ऊंच से ऊंचे दरबार है बाप की, क्योंकि यहां ऊंच से ऊंच पद दिया जाता है। वो लौकिक पढ़ाइयां पढ़ते हैं तो कोई इंजीनियर का पद पाते हैं, कोई डॉक्टर का पद पाते हैं, कोई जज बन जाते हैं। वो ऊंच से ऊंच पद नहीं है, लेकिन बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें ऊंच से ऊंच पद मिलता है। कौन सा पद? विश्व महाराजन। जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, महाराजा बनते हैं। पोप की कितनी बड़ी दरबार होती है, क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा धर्म गुरु उसका नाम क्या है? पोप। वो जहां जाते हैं तो बहुत बड़ा मजमा लग जाता है। हर एक धर्म में दरबारें हैं, उनकी दरबारें तो बार बार लगती रहती हैं, हर जन्म में लगती रहती है। ये बाप की दरबार तो एक ही बार लगती है, थोड़े समय के लिए पावन बनने की दरबार है, एक अक्षर सुने और उसको अच्छी रीति से मिलन करना है। कहा जाता है शिविर शिविर सुख पाओ, कलह कलह इस मिटे सब तन के। जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चों की सिवाय सब नहीं समझ सकते हैं। क्या अर्थ है जीवन मुक्ति का? जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन भी बना रहे, जिंदा भी रहे और जीवन रहते हुए दुख न भोगे, सुख ही सुख भोगे, दुख का नाम निशान न भासे, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जो बच्चे सर्विस पर रहते हैं उनका ही ऊंच पद बनेगा। सेवा नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं बन सकता। सेवा करने वाले बच्चे बहुतों को स्वर्ग का गेट दिखाने के निमित्त बनते हैं। बच्चों को अच्छी रीति समझना है और दूसरों को भी समझाना है कि ये पुरानी जर्जरी भूत दुनिया है, जो पुरानी चीज होती है वो तो खुदाई होती है, नई चीज सुखदाई होती है। हर चीज नई होती है तो सतो प्रधान, पुरानी बन जाती है तो तमो प्रधान, तमो प्रधान होती है तो दुखदाई बन जाती है। चाहे मकान हो, दुकान हो, सृष्टि हो, मनुष्य हो, सबको नए से पुराना बनना ही होता है। धर्म भी जब नए नए स्थापन होते हैं तो सुखदाई होते हैं, नंबर वार, और जब पुराने होते हैं तो दुखदाई हो जाते हैं। बल सनातन धर्म ईश्वर ने स्थापन किया, जब सतयुग में सतो प्रधान था तो बहुत सुखदाई था। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं थे। वही धर्म जब तमो प्रधान बनता है तो कितने दुखी हो जाते। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये कोई नई दुनिया नहीं है। पुरानी दुनिया में सब धर्म पुराने हो गए हैं, सब की धारणाएं पुरानी जर्जरीभूत हो गई हैं। अभी तो निराकार बाप हमारा टीचर बना है। तुम जानते हो कि हमारी आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है, ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है फिर औरों को पढ़ाती है। ऑर्गन्स विकारी पतित तमो प्रधान है। और विकारी की याद में अगर समझावेंगे तो भले ईश्वर का ज्ञान सुनावेंगे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तमोप्रधान दुनिया है, तमोप्रधान दुनिया में सदा शिव का ज्ञान जो सदा सात्विक है वो तभी ऐसा अच्छा असर डालेगा जब एक बाप की याद में रह करके सुना लेंगे। विविचारी याद करने से अच्छा असर नहीं होगा, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। अपन को आत्मा भी समझना है, जैसे कि भाई भाई आत्मा को हम बाप का संदेश सुनाते हैं। ज्ञान सुनाते समय अगर देह भाना आया तो इतना समझेंगे नहीं। मान लो कोई भाई ने बहन को समझाया या बहन ने भाई को समझाया और समझाते समझाते आंख में देह भान आ गया, आंखें विकारी बन गई, तो सुनने वाले के ऊपर कोई असर अच्छा नहीं पड़ने वाला है। कोई भी इंद्रियों से विकार में गिरना यह है काम कटारी। तुमको कोई कटारी मारे तो समझो ये डाकू है, हमारा खून करता है। खून कर दिया, खून कर दिया, यह कह करके रणी मारनी चाहिए। ये काम कटारी आदि मध्यंत दुख देती है। चाहे वो स्थूल इंद्रियों से हो और चाहे सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से आंख से हो, काम कटारी आदि में भी सुख देती है, अंत में भी दुख देती है, मध्य में भी दुख देती है। ये डाकुओं के काम से भी बदतर है। तुम बच्चों को तो बहुत नफरत आनी चाहिए। यहां तुम बाप के पास आते हो, यहां तुम्हारा होता है सत्संग, बाहर की दुनिया में है लतसंग, आसुरी संग है। आसुरी संग बोरे और ईश्वरीय संग तारे, इस विषय सागर के पार ले जावेगा। ईश्वरीय संग अगर नहीं है तो जरूर आसुरी संग। इसको कहा जाता है सत्संग तारे, वो तो जन्म जन्मांतर है। सत्संग करते आए, वो सत्संग करते करते दुनिया झूठ खंड बन गई, तो समझना चाहिए हमने सत्संग किया या दुष्ट संग किया। सत्य संग किया होता तो सतयुग स्थापन होना चाहिए। अभी बाप आए हैं सतयुग स्थापन करने, अभी जानते हो शिव बाबा का संग हमको घर ले जाता है। पहले घर शांति धाम जावेंगे, फिर सुख धाम में आवेंगे। जितना पढ़ेंगे, जितना याद की यात्रा में रहेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होते रहेंगे। पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं और कैसे पाप कर्म बनते हैं? पाप कर्म बनते हैं देह अभिमानियों के संग में आने से। जो देह को याद करने वाला है, देह का मनन चिंतन मंथन करने वाला है, उसका संग करने से पाप कर्म बनेगा। और शिव बाप, उसको अपनी देह ही नहीं है। जिसको अपनी देह है ही नहीं, उसको देह याद आवेगी क्या? वो तो सदा शिव है, सदैव ज्योति बिंदु आत्मा है। वो देहधारियों में प्रवेश भी करता है तो भी संग का रंग नहीं लगता। जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है तो भी संग के रंग में नहीं आता। और जितने भी मनुष्य हुए हैं या जो भी मनुष्य गुरु हुए हैं, वो सब इस दुनिया में आकर के पतितों के संग में आने से पतित बन गए। एक शिव ही ऐसा है जो पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, गंदे गांव में आता है, फिर भी पतितों के संग में रहते रहते पतित नहीं बनता और ही पावन बनाए देता है। जो भी उसके संग के रंग में आवेंगे, चाहे दृष्टि के संग के रंग में आवे, चाहे वाचा के संग के रंग में आवे, चाहे कानों से आवाज सुनकर के संग के रंग में आवे, चाहे कर्मेंद्रियों के स्पर्श के संग के रंग में आवे, वो पावन ही बनेंगे, पतित नहीं बन सकते।